कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार पिछले दो तीन दिनों से वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ है, केवल भारत में ही है, शायद छह ऋतुएं देखी जाती है दो दो महीने, मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से दो और उसके बाद दूसरे ऋतुओं में वो मिल जाती है। और खास करके वृंदावन में ये ऋतुएं, खास करके भारत में भी हम देखते हैं ये ऋतुओं, खास गांव में ये ऋतुएं अच्छे तरह से समझ में आता है, नजर में आती है, शहर में समझता ही नहीं कौन सा ऋतु है, कुछ एक ही ऋतु है बस, और वो है हर एक व्यक्ति व्यस्त रहता है, कुछ वो न पत्ता देखने का समय है ना आकाश देखने का समय है उसको और ना कुछ दिखता भी है, कुछ दिखता ही नहीं है ऋतु में। पर यहां थोड़ा हम देख सकते हैं, इतना हरा भरा, खास करके गांव में जाएंगे तो बारिश जब आता है महीनों भर के धूप तप्त अवस्था में अगर पहली बार बादल आते हैं और बारिश आता है, ऐसा लगता है मानो पूरे दिन भर के काम काज करके कोई थका हुआ और गंदगी से भरा हुआ व्यक्ति अगर स्नान करे, पानी में एक डुबकी लगाए या शवर के नीचे खड़े हो जाए तो बहुत ही ताजगी का अनुभव होता है और फिर से मानो पुनर्जीवित हो गया है, मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया हुआ, इस तरह से हम देखते हैं। तुरंत दो दिन बारिश आई है अभी और आप देखेंगे कि वातावरण कितना, और थकावट दूर हो गया, जो गर्मी थी गर्मी दूर हो गई और आंखों के लिए भी कितना बहुत आनंदमय वातावरण सब में मानो जान आ गया, और ऐसा लगता है कि रात को किसी ने आके पूरे पृथ्वी को नहलाया अच्छा से, घिस के महा क्लीनिंग करके गए, पेड़ भी इतने फिर से एकदम, और आप थोड़े ऊंचे जगह पर खड़े होकर देखेंगे निहारेंगे इस हरियाली को, खेत है वहां किले कोल्हापुर में कम से कम देखने को मिला, मुंबई में वो मिलता नहीं, दूर दूर कंक्रीट जंगल दिखता है बस, पेड़ के जंगल दिखते नहीं, हरियाली और सुंदर बादल, तब हम समझ सकते हैं ये जो सारी ऋतुएं हैं ये भगवान की शक्ति है, ये माया अध्यक्षेण प्रकृति, कितना सुंदर अलग 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 ऋतुएं बनाए हैं और हर एक ऋतु में अलग अलग एक खासियत है। और इन ऋतुओं में भी सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनेंगे वृंदावन का वर्णन तो इसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति का, सिर्फ चारों ओर कॉन्शियस एफर्ट, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, कृष्ण भावना भावित होना, मतलब हर क्षण हर एक चीज से देखना वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। आप देखेंगे 24 गुरु भारत अपने भागवत के 11वें स्कंद में महाराज यदु जब भ्रमण कर रहे थे तो उस अवधूत व्यक्ति से मिले जो कहता है कि मेरे 11 यानी 24 गुरु हुए, कबूतर से मैंने कुछ सीखा, पृथ्वी से मैंने कुछ सीखा, पेड़ से मैंने कुछ सीखा कि कैसे आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक वेश्या से मैंने सीखा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये वर्षा ऋतुओं में भी सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर से वर्णन करते हैं। तो यहां वर्णन कर रहे हैं इसके बाद यानी ग्रीष्म या गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का शुभारंभ हुआ, जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। अब देखेंगे पेड़ भी ऐसा लगता है फिर से पुनर्जीवित हो गए, सूखे पेड़ फिर से हरियाली हो गई। आप खेत भी देखेंगे, सब जला हुआ खेत फिर से एकदम हरा भरा हो जाता है। समस्त जीवों को जीवन दान देती है। आकाश गरजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित हो जाता है। कितना सुंदर उपमा है। अब दूसरे दिन देखेंगे साफ आकाश, नीला आकाश, एक भी बादल नहीं दिखता कभी कभी, पूरा साफ ब्रह्म ज्योति। और अभी आप देखेंगे आकाश दिखता ही नहीं, बारिश के दिनों में आकाश दिखता ही नहीं है, हर जगह घने घने बादल दिख। सूरज भी अगर उगा हो तो दिखता नहीं है। अभी सूरज उगा है कि नहीं, नहीं मालूम, पर हमको मालूम है सूरज उगा है क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश है इसका मतलब सूरज है, पर अभी ढक गया है, पूर्ण रूप से सूरज का अनुभव नहीं हो रहा है, पर कहीं तो मालूम है सूरज तो होना ही चाहिए, कॉमन सेंस। नहीं तो फिर केवल बादल होंगे तो कैसा। इसी तरह से आत्मा सारे प्रकाश का कारण वही तो है। अगर जीवित है ये शरीर तो आत्मा उसका कारण है, निर्जीव हो जाएगा नहीं तो। पर अभी वो आत्मा कोई देख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि त्रिभीर गुणमयीर भावयीर, तीन गुणों से ढका हुआ है। एक बच्चा क्या समझता है आज सूरज नहीं उगा है, पर बुद्धिमान व्यक्ति समझता है अरे इतना प्रकाश है इसका मतलब सूरज उगा हुआ है। तो कम बुद्धि वाले समझते हैं कि आत्मा कुछ है ही नहीं बस, पर बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये मरा हुआ शरीर अगर चल फिर रहा है इसके अंदर कोई आत्मा है, पर आत्मा का अनुभूति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि तीन गुणों से ढका हुआ है, सत्व रजो और तमोगुण। सत्वगुण की तुलना बिजली से की गई है, बिजली चमकती है बीच में, फिर बादल गरजता है, वो गरजने की तुलना रजोगुण से की गई है, और फिर घने बादल जो है काले काले बादल जो सूर्य के किरणों को बहुत हद तक ढक दिए, वो ढके हुए जो है वो तमोगुण की तुलना की गई है। भगवान गीता में कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम, आवर्त हो गया, शुद्ध ज्ञान, सच्चित आनंद। आत्मा जो है शाश्वत है और चिन्मय है और आनंदमय है, और शरीर उसका पूरा विरुद्ध, असत, अचित और निरानंद। तो फिर शरीर को आत्मा हम कैसे समझ लेते हैं? देहात्म बुद्धि, क्योंकि ये ढका हुआ है। कि काम कहां से आया? काम क्रोध इत्यादि, काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से ढका हुआ व्यक्ति इसलिए दिखता नहीं। तो इस तरह से जैसे 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 बादल चले जाते हैं नजर आता है हमको, और वो आवरण कैसे निकालना है? तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब श्रवण करते रहते हैं, श्रृण्वताम सुखथा कृष्ण पुण्यश्रवण हृदयंतस्तो हि अभद्राणि, वो अभद्र केवल श्रवण मात्र से धीरे 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 ये बादल आवरण जो है वो हट जाते हैं और आत्मा का मूल स्वरूप नजर आता है। कब? जब व्यक्ति वो तीन गुणों को ही उपयोग करके सेवा करने लगता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। फिर कहते हैं सूर्य, अगले श्लोक में कहते हैं और एक सुंदर उदाहरण, सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। 8 महीने तक सूरज जो है पृथ्वी में जितने सारे जल के अलग अलग स्रोत हैं, जलाशय, उसमें से पानी चूसता रहता है। ऐसा आप बोलेंगे किधर चूसता है, कैसे जाता है ऊपर? बाष्प के रूप में जाता रहता है ऊपर। और फिर ये वर्षा ऋतु में जब जरूरी है फिर से वही पानी वापस शुद्ध करके एकदम शुद्ध अवस्था में सब जगह बांट देता है और एकदम हरियाली भर जाता है। तो इसकी तुलना एक आदर्श सरकार से की गई है, राजा से। राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। जहां जहां पानी ज्यादा है वहां वहां से लेना चाहिए उसको, कर के रूप में, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बिक्री कर, आयकर, आयकर भवन, सब जगह, दूसरे भवन हो ना हो आयकर भवन सब जगह होता है, बिक्री कर, आयकर। तो सरकार हर एक चीज, कहां कहां, जहां उद्योग हो रहा है, जहां व्यापार हो रहा है, जहां कृषि हो रही है, इन लोगों से लेना, जहां है उन लोगों से लेना, जहां थोड़ा जरूरत से ज्यादा है वहां से लेना। लेने के बाद जब जरूरत समय है उस समय मुक्त हस्त बांट देना सबको। उसको सदुपयोग, पूरा पूरे समाज के भलाई के लिए रास्ता बनाना। अभी ब्रिज बन गया है रंकाला के सामने, बहुत अच्छा हो। कितने लोगों को समस्या होता है आने जाने में, कहां से आता है पैसा? सबसे इकट्ठा करता है और करके समाज कल्याण के लिए सब जगह उसको लगा देना। बचाना नहीं कुछ, सब दे देना, या कुछ स्टॉक नहीं रखना। दुर्भाग्यवश आज सरकार ऐसा नहीं है। अच्छे तरह से ले लेते फिर खुलता ही नहीं है हाथ, और हाथ खुलता भी है तो कहीं और खुल जाता है, खत्म हो जाता है। और इसीलिए प्रजा बड़े खुशी से देती थी कर, बड़े खुशी से, कभी किसी को कमी नहीं था। और इसीलिए जैसा आप देखो बादल एक कुछ भी नहीं रखता है, सब बांट देता है वापस, रखता नहीं है सूरज, थोड़ा इमरजेंसी के लिए रहने दो, थोड़ा इधर कहीं रखे, नहीं, 8 महीने जो एकत्रित किया है बाकी महीने में बांट देता है वो। और किस तरह से, जरूरत है या नहीं, सब जगह मुक्त हस्त बांटना। तो स्वाभाविक रूप से देने वाला भी बड़े हृदय पूर्वक देगा, खुशी से देगा, क्योंकि उसे विश्वास है कि इसका सदुपयोग होने वाला है सही तरह से। जहां वो जरूरत है वहां इसका उपयोग होगा। ये हमारी संस्था भी ऐसे ही चल रही है, लोग विश्वास के साथ देते हैं, देखते हैं कि यहां अच्छा सदुपयोग हो रहा है, देते हैं। आप सोचिए अगर एक वैष्णव राजा हो, पूरे सरकार, पूरे पृथ्वी का एक सम्राट परीक्षित महाराज जैसे हो, क्यों लोग नहीं देना चाहेंगे? युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य का वर्णन किया गया है 4th अध्याय के प्रथम स्कंद का शुरुआत में, 4-5 श्लोकों में, 4th अध्याय, हाँ नहीं बाद में शायद, 5-6 श्लोकों में, आधव व्याध सर्वे दैव भूतात्म हेतु, ये जो प्रकार की तीन तीन प्रकार के तापत्रय हैं वो भी प्रायशः नहीं थे, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता था, और गाय इतने दूध देती थी, मुदा पयसो धस्वती मुदा, बिना दो दोहे ऐसा गाय सिंचन कर देते थे, पूरे जमीन को भीगे भीगे रहते थे। तो इस तरह से प्रकृति से हम कितने सीख सकते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, एक संतुष्ट और शुभ जी समृद्ध जीवन जीना और आध्यात्मिक प्रगति भी करना। फिर बिजली, अगले श्लोक में कहते हैं, बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए तथा दूर ले जाए गए। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। तो बहुत सुंदर से प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झकझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब ग्रीष्म ऋतु के बाद पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो ये बादल एक धनी पुरुष की भांति होते हैं, जिस तरह आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना सारा कोष खाली हो जाने पर भी धन लुटा देता है, उसी तरह ये बादल पृथ्वी की तरह सतह पर अपना सारा जल वितरित करके स्वयं रिक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़ता है, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती तो वे धन का वितरण इस तरह करते मानो बादल जल वितरित कर रहा हो। बादल द्वारा जल का वितरण इतना भव्य होता है कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति के द्वारा धन वितरण से की जाती है। तो महाराज दशरथ का यहां उदाहरण दिया जा रहा है कि जब वो एक क्षत्रिय कैसा होना चाहिए, विनाश आय दुष्कृताम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, तो जब वो संहार करने निकलते थे, दुष्टों का संहार करने निकलते थे, कैसा व्यक्ति भी क्यों ना हो उसको नष्ट करते थे, या खुद नष्ट हो जाएंगे या उसको नष्ट करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। जिस तरह खेत में कभी कभी अवांछित ऐसे पेड़ पौधे उग जाते हैं, वीड्स, तो किसान जो है उसको निकालता है, आप देखेंगे बारिश के दिनों में वो बैठ के खींचते रहते ऐसे, निकालते रहते ऐसे पौधों को जो खत्म कर देते हैं ये अच्छे बीज को, तो उसको निकाल के फेंकना। तो ऐसे ऐसे अवांछित जो एलिमेंट्स इन सोसाइटी, बैड एलिमेंट्स इन सोसाइटी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उन लोगों को ऐसे निकालते थे, एक भी नहीं छोड़ते थे, और जब वो दान देते थे तो बिना भेदभाव के, कहां दान जरूरी है कहां थोड़ा कम देना ज्यादा, ऐसा नहीं। बारिश देखो आप, समुद्र में भी होता है, तालाब में भी होता है, पत्थर पे भी होता है, खेत में भी होता है, भेदभाव नहीं, सब जगह मुक्त हस्त देना। तो इस तरह से बादलों की तुलना ऐसे धनी व्यक्ति से की गई है कि वो एकत्रित करते हैं, सब कहां से एकत्रित किया है पर अपने पास नहीं रखते, संपूर्ण रूप से दे देते। वैश्यों से, खास करके वैश्यों की प्रवृत्ति है दान देना। फिर अभी दूसरा उदाहरण, तपः कृशा देव मीढ़ा आसीद वर्षीयसी मही यथैव काम्य तप तंतु संप्राप्य तत्फलम। ये सुंदर देखिए उदाहरण, ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी दुर्बल हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा गीली किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण दुर्बल हो जाता है, किंतु तपस्या के फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह हरा भरा हो उठता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, ठंडी के दिन आप व्हाट डू यू कॉल दिस बेड बग्स, खटमल, ठंडी के दिनों में आप खटमल देखिए, पेपर का टुकड़ा जैसा पतला हो जाता है बेचारा, क्योंकि पसीने के ऊपर जीता है वो, ठंडी में किसी की पसीना ही नहीं छूटता। तो खटमल जो है खाट के नीचे होता है, हजारों हैं तो समझता भी नहीं है, ऐसा मतलब है छिले हुए एक टुकड़े के समान। पर जैसा गर्मी आता है, खून चूस चूस के हट्टा कट्टा हो जाता है। इसी तरह से काम वासना को पूर्ण कर की हुई तपस्या, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु की तपस्या कैसी थी? अरे इतना सूख गया वो, मांस चला गया, खून चला गया, हड्डी था केवल। आप देखेंगे भागवत में सुंदर चित्र बनाया है, आधा हड्डी और आधा हट्टा कट्टा, मतलब ब्रह्मा जी आने के बाद ऐसा हड्डी हो गया था, हड्डी में वो प्राण संचालन कर रहा था। पर जैसे कृपा बारिश हुई ब्रह्मा जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर मतलब जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, क्या बेचारा अभी मर जाएगा तो, आखिर मेरा बेटा ही है, शरारती, जिद्दी, ठीक है क्या चाहिए ये ले। तो इस तरह से फिर उसको जब उसके ऊपर कमंडल से पानी डाले तो उसका शरीर फिर से मानो सूखा हुआ पेड़ कैसा बारिश के बाद ऐसा हरा भरा हो जाता है, वो पृथ्वी जो सूखी हुई थी गर्मी के दिनों में फिर से बढ़ जाती। पर कितने समय तक? 4 महीने तक बस। तो यह तपस्या आदर्श तपस्या नहीं है। काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भी असुर तपस्या करते हैं। एक्चुअली असुरों की तपस्या भक्तों की तपस्या से ज्यादा तीव्र होता है। जो तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया, जो तपस्या रावण ने किया, काई भक्त शायद नहीं किए होंगे उतना। क्यों यह तपस्या? गीता में वर्णन है, तमोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या और सत्वगुणी तपस्या। तमोगुणी तपस्या मतलब अपने शरीर को तकलीफ देकर दूसरों को तकलीफ देने हेतु की हुई तपस्या, ये तमोगुणी तपस्या है। रावण पहले तपस्या किया, अपने शरीर को तकलीफ दिया, उसके बाद जब शक्ति आ गई तो दूसरों को तकलीफ दिया, पहले खुद रोया बाद में दुनिया को रुलाया, दोनों तपस्या। तो ये तपस्या जो है तमोगुणी, और फिर रजोगुणी तपस्या। रजोगुणी तपस्या मतलब बहुत ही तीव्रता से अपने को तकलीफ देना ताकि हम बाद में भोग कर पाए। पर तीनों गुणों से परे तपस्या जो है वो क्या है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत। रजोगुणी तपस्या से अहंकार बढ़ जाता है। हम जो कर रहे हैं तपस्या वो रजोगुणी है या शुद्ध है कैसा पता करें? सरल सी बात है, कभी कभी हम तपस्या करते हैं, समझ लीजिए हम एकादशी के दिन हम लोग 100% निर्जल कर रहे हैं और दूसरों को देखते हैं खाते हुए, बोलते अच्छी चीज क्या खाते लो, मुझे देखो, ये एक प्रकार का रजोगुणी तपस्या हो जाता है कि अहंकार आ जाता है, देखो मैं कितना तपस्वी हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं। और ये जो ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को तपो दिव्यम पुत्र का, ये न सत्वम शुद्धियत, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तपस्या। एक ही असली में तपस्या का उद्देश्य यही है। ऐसा तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है। और अस्तित्व को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, भक्ति। इसीलिए भक्ति करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, और कोई अलग तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसे, ये नौ चीज करो, बहुत बड़ी तपस्या है। और ये तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, और आप सचमुच में संतुष्ट हो जाओगे और ये अनंत फायदा मिलेगा। ये चार महीने का फायदा नहीं, आठ महीना तपस्या करके चार महीने का फायदा। हिरण्यकशिपु कितना जी पाया इतना सब भोग करने के लिए, अहंकार के कारण अपराध कर बैठा, जल्दी मर गया वो बेचारा। सुबह नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, पांच साल में ही मर गया। जब उसने खास करके भगवान भी बोले, बोले मैं अभी उसका समय अच्छा है, पर जिस दिन वो मेरे महाभागवत भक्त को तब ये करेगा, आयुहु उसकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसका। तो आराधितो यदि हरि ही तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर हरि की आराधना कर रहे हो तो फिर दूसरा तपस्या कोई करने की जरूरत नहीं है। और न आराधितो यदि हरिस, और अगर आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हो भक्ति के द्वारा तो तपस्या क्यों कर रहे हो भाई। अगर भक्ति कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो, और अब अगर भक्ति नहीं कर रहे हो तो तपस्या क्यों कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति करना ही तपस्या है, खास करके कलयुग में भक्ति करना ही तपस्या है। और सबसे बड़ा बाधा है इसमें अहंकार। कीर्तनीय सदा हरि क्यों नहीं होता, तृणादपि सुनिचेन तरोरी वसहिष्णुना अवमानिना मान देना, हो गया ना तपस्या। नम्र रहना, आर रह रह रही, सबसे बड़ी तपस्या है। प्रभु एक कोने में बैठ के मैं 64 माला कर सकता हूं, नम्र मत बोलो इसको, इसको मैं दिखा के रहूंगा मैं कितना कर सकता हूं तपस्या। नम्र रहना सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि दूसरी तपस्या अहंकार को खिला रहा है। आप फास्टिंग कर रहे हो 50 साल तक, पर आपके अहंकार को ठूस ठूस के खिला रहे हो, वो मोटा होते जा रहा है। सबसे बड़ी तपस्या है इस अहंकार को खिलाओ मत, उसको भूखा रखो। तृणादपि सुनिचेन, सबसे बड़ी तपस्या है ये अहंकार जो है। हर एक चीज में, हर एक संबंध में, भगवान के साथ हमारा संबंध क्यों नहीं हो रहा, अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भक्तों के साथ क्यों हमारा जम नहीं रहा, उसने ऐसा क्यों देखा मुझे, देखा ही क्यों नहीं, अगर देखा तो झाड़ घूर घूर के क्यों देखा, कुछ भी किया तो तकलीफ। सुतृणाद भी सुन तरोरिव सहिष्णुना, सहन करो बाबा, सबसे बड़ी तपस्या है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसका चेहरा नहीं देख सकता, बस सहन करो। अगेन क्यों सहन नहीं कर सकते, ये चारों अब देखेंगे, तृणादपि सुनिचेन तरोर अमानिना और मान देन, चारों एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, अहंकार से जुड़ा हुआ है। और वो कीर्तनीय सदाहरि, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान का आश्रय ले सकता है। तो नम्र भाव से पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेना सबसे बड़ी तपस्या है। और एक्चुअली तपस्या का मेन उद्देश्य यही है, तपो दिव्यम पुत्र का, ये न सत्वम शुद्धित, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तपस्या। बस क्यों, क्यों तपस्या, आप सोचिए ठंडे दिमाग से, हर एक व्यक्ति तपस्या क्यों कर रहा है, कितना तपस्या कर रहे हैं लोग आज दुनिया में, किस लिए कर रहे हैं, सुख पाने के लिए। अभी मैं 10 साल करूंगा, उसके बाद जब देखो उसका फल मिलेगा तब मैं भोग करूंगा, आनंद लूंगा, अरे सबको आनंद चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए। उस शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए अभी तपस्या कर रहे हैं। तो जब तपस्या अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए होता है, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, सचमुच में हम आनंदमय है, आनंदमयोभ्यासात्, भगवान सच्चिदानंद है, हम उनके अंग अंश होने के कारण हम भी सच्चिदानंद हैं। तो आनंद है ऑलरेडी। यो अंत सुख अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव, यह अंदर खजाना है, पूरी दुनिया में ढूंढ रहे, तपस्या कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, पूरी दुनिया खोज रहे हैं, कहां है वो धन? अरे वो सारा धन अंदर ही है। बाप का धन, सनातन गोस्वामी कहते हैं बापेर धन, हमारे पिता ने बहुत बड़ा धन हमारे लिए छोड़ के गया, कहां? घर के पिछवाड़े में रखा हुआ है, पूरा दुनिया खोज रहे हम लोग, यानी हमारे हृदय में ही रखा हुआ है। अब सदगुरु आके बताते हैं कैसा वो धन को लेना, उस धन को लेने के लिए तपस्या करो, उस हृदय को खोलने के लिए, और वो है एक्चुअली भक्ति। तो सचमुच में भक्ति करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, बुद्धिमता, बुद्धिमान तपस्या। और इस तपस्या के लिए, तपस्या का मतलब क्या? वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर समथिंग बेटर इन द फ्यूचर। वॉलेंटरीली मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वेच्छा से अपने को थोड़ा तकलीफ देना अभी, ताकि बाद में सुखी रहे, यही तो तपस्या है। जानबूझ के मैं नहीं ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, जो अच्छा लगता है वो नहीं करूंगा अगर अनुकूल नहीं है तो, और जो नहीं अच्छा लगता है वो मैं करूंगा अगर अनुकूल है तो। अनुकूल्य से संकल्पो, प्रतिकूल्य से वर्जनो, यही तपस्या है जो भक्ति के लिए अनुकूल है। भले हमारे मन को, इंद्रियों को अच्छा लगे या ना लगे, उसको स्वीकार करना, और प्रतिकूल्य से वर्जनो, जो प्रतिकूल है, भले इंद्रियों को कितना अच्छा लगता हो, मन को कितना अच्छा लगता, अगर प्रतिकूल है तो उसको अस्वीकार करना ही तपस्या है। तो इस तरह से तपः कृशा देव मीढ़ा, सुंदर से हम सीख सकते हैं। फिर बड़े सुंदर से क्या सुखदेव गोस्वामी, देखिए भक्त जो होता है ना, ही इज द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ही इज द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट, ही इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, ही इज द बेस्ट ऑफ एवरी, ही इज द बेस्ट साइंटिस्ट, ही इज द बेस्ट फिलोसोफर। शुद्ध भक्त जो है, he is the best of every in the every in every field। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि what is the purpose of psychology, बताइए क्यों हम लोगों को दूसरे का अपना स्वभाव समझना, दूसरों का स्वभाव किस लिए समझना है हमको, किस लिए? The ultimate purpose is to purify our existence and achieve Krishna। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं दुनिया में, इसका मतलब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं उनकी, वो सब समझना बहुत अच्छा है। दुनिया में ऐसे कई अजीब प्रकार प्रकार के पागल लोग, उनको सुधारने के लिए चाहिए, वो ठीक है। द अल्टीमेट साइकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ कृष्णा। ऑफकोर्स वी कैन नेवर अंडरस्टैंड, इवन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, खुद नहीं समझ पाएंगे, पर उनको समझना, और वो समझ गए तो पूरा दुनिया का साइकोलॉजी समझ गए, क्योंकि जो बनाया उसका साइकोलॉजी समझ गए, क्यों बनाया, तो फिर समझ गए ना। ही इज द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट, क्यों ही इज द बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, किस लिए बनाया भगवान ने ये चार वर्ण बनाया, किस लिए बनाया, उसका भेदभाव किस तरह से किया, उद्देश्य क्या है? इसीलिए कहते हैं यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, यस्मिन विज्ञाते, अगर आप भगवान को जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। इसीलिए जो भागवतम समझ गया ना, सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी प्रहलाद महाराज, अपने प्रोफेसर शंडा अमरका को सिखा रहे हो, वो उनसे हजार गुना ज्यादा बुद्धिमान थे शंडामर का, पर क्योंकि कृष्ण भक्ति नहीं था इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाए, उनको सिखाना पड़ा। तो सचमुच में भागवतम का अध्ययन करना, इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं स्कूल शुड बी लर्निंग श्रीमद भागवतम। एवरीवेयर वी शुड स्टडी श्रीमद भागवतम। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी इस वर्षा ऋतु को देखकर क्या क्या कुछ सीख लिए हैं। प्रभुपाद जी इट्स अमेजिंग, उनका आप लॉजिक देखो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो। एक स्त्री का साइकोलॉजी क्या होता है, एक पुरुष का साइकोलॉजी क्या होता है, भागवतम में पढ़िए आप, इतना सुंदर से बताया गया है। स्त्रियां खुद कह रही है उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। आप अगर इनका पढ़ेंगे ययाति का, एक एक तात्पर्य में भी बड़े अच्छे तरह से प्रभुपाद मतलब हीरे हीरे निकलते हैं आपको। ये हीरों का खान है, डीप ज्यूवल्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, नॉट ओनली ट्रूथ बट हाउ टू यूज इट, कैसा उपयोग किस चीज के लिए करना चाहिए। हीरा है पर मालूम नहीं है, वो तराजू में वजन डालने के लिए लगा रहा है बस, तो क्या फायदा। वो विद्या जहां भगवान की भक्ति को अंततः, अगर वो विद्या भगवान की भक्ति को प्रेरणा नहीं दे रही है तो विद्या कैसा है, सांप के ऊपर लगा हुआ मणि है। ये बड़े बड़े विद्वान है ना इस संसार में जो भक्त नहीं है, वो सांप के ऊपर मणि जैसा है, नाग सांप के ऊपर मणि। क्यों ईशोपनिषद कहता है, क्यों नाग सांप के ऊपर मणि जैसा है, क्योंकि मणि से आकर्षित होते हैं, पास जाने के बाद वो डस लेता है उनको। तो ये इन विद्याओं से हम आकर्षित हो जाते हैं। क्या विद्या है, क्या नॉलेज है, क्या साइकोलॉजी है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या ये है, क्या वो है। इवन आजकल कितने बड़े बड़े मतलब वैदिक संस्कृति में भी, वैदिक चीजों में भी विद्या आई है। त्रैगुण त्रैविद्यामाम सोमपा पूत पापा, कोई भी विद्या भक्ति अगर नहीं हो तो वो सांप के फनों के ऊपर मणि जैसा है, मणि आकर्षित करता है, मणि लेने जाते हैं और सांप डस के विष मिल जाता है, मणि वहीं रह जाता है। पर अगर वही चीज भागवतम के द्वारा गाए, भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद जी किस तरह से उसका उपयोग करते। बड़े बड़े विद्वान लोग सामने आते थे, उनको एक क्षण के अंदर उनकी कमी दिखा देते थे, अपरिपक्वता उनका दिखा देते थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको बेसिक उनका जो आधार है उसको हिला देते थे प्रभुपाद, और जो भी ओपन माइंडेड पर्सन था वो स्वीकार करता था कि स्वामी जी आप जो बोल रहे सही है, जिसका अहंकार होता था चले जाता था गुस्सा होकर। तो यहां देखिए कितना सुंदर से उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी सिर्फ वर्षा ऋतु का, और उसके द्वारा हमें सीखने योग्य सीख। वर्षा ऋतु के सांध्य धुंधलेपन में, मतलब शाम को जब ट्वाइलाइट अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे, जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं। कल हमने थोड़ा विस्तृत रूप से इसका चर्चा किया। जब सूरज डूब जाता है तब रात में जुगनू चमकते हैं, और रात में स्वाभाविक रूप से जुगनू से लोग आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि अंधकार है। इसी तरह से कृष्ण सूर्य समा, कृष्णे सुधाम भगते धर्म कलौ नष्ट दृशामेश पुराण, भागवत इस अंधकार को, दुनिया के अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है, सूरज जैसा इस अंधकार को दूर कर सकता है। आप करोड़ों लाइट लगाओ, कोल्हापुर में करोड़ों लाइट है, लोनावाला में करोड़ों लाइट है, बंबई में करोड़ों लाइट है, सब लाइट चालू करो, जितने पृथ्वी पर जितना लाइट है सब चालू कर दो, फिर भी सूरज अभी उगा भी नहीं है, बादलों के पीछे, पर इतना प्रकाश नहीं आएगा पूरे दुनिया के सारे लाइट चालू करने पर भी। जो सूरज उगने से पहले सुबह का जो प्रकाश आता है उतना प्रकाश दुनिया के सारे लाइट चालू करने के बाद भी नहीं होगा। इसी तरह से भागवत का प्रकाश, गीता, क्योंकि भगवान से मुख से निकला हुआ, ये जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने की क्षमता भागवत, व्यक्ति भागवत, पुस्तक भागवत और भगवान में है, भगवान के शब्दों में। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े प्रोफेसर और उनके बड़े बड़े विचार, जैसे हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट। उसको विश्वास था कि मैं जो पुस्तक लिखा हूं ना कम्युनिज्म का, ये एक्चुअली पूरे दुनिया का उद्धार हो जाएगा, सब समान आ जाएगी, समता आ जाएगी। उसको विश्वास था और उस पुस्तक को स्वीकार करके 80 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला, लेनिन स्टालिन। एक्चुअली लाखों लाखों, 10-10 लाख लोग मारे गए उसको साबित करने के लिए कि सही है, सही है। और जो उसके विरुद्ध बोला, मार दिया गया उनको। अपने ही देशवासियों को स्टालिन ने, स्टालिन के सामने अगर हिटलर ने जो ज्यूस को मारा ना, वो ऐसा जो लोकल गुंडा एक दो को मार दिया ऐसा है, ऐसे लाखों लोगों को मारा उसने, दबा के रखे ये कहने के लिए कि ये सत्य है, ये सही जरूर होगा, जरूर होगा। माओ ने कोशिश किया चाइना में और अब समझ में आ गया, जब वो टुकड़े टुकड़े हो गए सबके आंखों के सामने पता लग गया। अभी बंगाल में भी हो गया 34-35 साल के बाद। ये साम्यवाद जो है, ईशो परिषद बताता है क्या साम्यवाद है, पर हमें क्या विश्वास है? नहीं है तो सीखो, देखो करोड़ों लोग मार जाने के बाद, 80 साल अंधकार में डूबने के बाद में कम बुद्धि वालों के लिए देख, ये सब एक्सपेरिमेंट काफी है, पर दुर्भाग्यवश हिस्ट्री पढ़ते हैं पर उसको समझते नहीं हम लोग। हिस्ट्री में 100 मार्क आता है, सबका नाम, कब पैदा हुआ, कब मरा, पर सीखा क्या उसमें? पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, फिर वही कर रहे। क्या सीखा तुमने इतिहास? भागवत जो इतिहास है वो सिखाता है क्या नहीं करना है। भाई सुनो, तुमसे बड़े बड़े लोग आ गए, महारथी लोग, पूरे ब्रह्मांड को जीत पाए, इंद्रियों को जीत नहीं पाए, पर जिसने इंद्रियों को जीता सुखी रहा। सीखो, इतिहास से सीखो, पर क्या सीखना है वो नहीं सीखते। इतिहास सीख रहे हैं पर इतिहास से जो सीखना है वो नहीं सीख रहे, ये हमारी समस्या है। क्यों हम भागवत पे जोर नहीं देते? क्योंकि हमको ही विश्वास नहीं है कि भागवत के अंदर ये सब है। भागवतम, देयर इज ए चैप्टर, एक अध्याय है भागवतम एज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। पर क्यों हमें नहीं नजर आता है आजकल? क्योंकि गहराई में गए नहीं हम लोग, कभी गहराई में चर्चा नहीं किया इसको। अरे ये रसिक भक्तों के लिए है, निर्मत शरणाम सताम, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट हु हैज भागवतम, हु अंडरस्टैंड्स भागवतम, व्हाट टू स्पीक ऑफ वन हु लिव्स भागवतम, जो जीता है भागवतम, चलता फिरता भागवत। उदाहरण देखो ना प्रभुपाद जी, डायरेक्टली जस्ट सी हिम एज ए साइंटिस्ट, एज ए सोशल साइंटिस्ट, सी चैतन्य महाप्रभु एज ए सोशल साइंटिस्ट। ऐसे समय में जहां मुगल साम्राज्य था, वहां चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसा समाज बनाया जहां साम्यता था और साथ साथ में बाहर का दुनिया बाहर चल रहा था, पर अंदर ही अंदर उसमें, उस रेगिस्तान में उन्होंने एक ऐसा एक ओएसिस बनाया जहां भले रेगिस्तान में है पर फिर भी जो उसका आश्रय लिया भागवत के सिद्धांत का, वो खुश रहे, वो आत्म साक्षात्कार किए, वो अपने जीवन को सफल किए। प्रभुपाद ने दिखाया पाश्चात्य देश में जाकर एवरीथिंग इज ए फेल्योर और किसी को मालूम ही नहीं सॉल्यूशन क्या है। उद्देश्य अच्छा है पर ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद ने बोला मुझे पैसा दो मैं दिखाता हूं। ये सारे जो लोग समाज से बाहर चले गए ना तुम्हारे नवयुवक, इन लोगों को मैं एक पैसा भी नहीं दे रहा हूं, ये देखो मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार। आप लोग जो बोल रहे हैं आपके घर से भाग रहे हो लोग, माता पिता का सुनते नहीं, पर मेरा मैं जो बोलता हूं सुनते हैं, देखो सुधारा कि नहीं मैं इनको। आप इनका क्या ना ना बोलता दारू छोड़वा, बंबई के ट्रेन में मैंने देखा बिना बोले घर में दारू छोड़ो। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं दारू छुड़वाने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस छुड़ाने के लिए, सब छुड़ा दिया। एक 100 सोनार की एक लोहार की, सब सोनार की टुक 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 छोड़ रहे कुछ नहीं हो रहा, पर एक लोहार का धन मारा तो हो गया। भक्ति ऐसा है। तो सुखदेव गोस्वामी कितने सुंदर से कह रहे हैं कि ये सारे जुगनू जैसे हैं। क्या हमको कन्विंस्ड है? कभी कभी ऐसे सिद्धांतों से हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि हमारा अंधकार है, सूरज अंदर उगा नहीं अभी तक, इसीलिए हम दूसरे चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, दूसरे सिद्धांतों से, दूसरे तथाकथित सुझाव से। ओ इसमें सुझाव है जो भागवत में नहीं है। तो ये जुगनू जो है ये प्रकाश देने लगते हैं अंधकार में, पर एक बार सूरज उग गया तो जुगनू क्या, जुगनू को खुद को नहीं समझता है प्रकाश आ रहा है कि नहीं उसके शरीर से। तो इस तरह से हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कितना सुंदर से हम सीख सकते हैं। अब जुगनू को देख के हम कभी ऐसा सोचते हैं? सुखदेव गोस्वामी का दृष्टिकोण देखिए, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का हर एक चीज से वो सीखता है। वाह देखो ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ अंत में और एक 5 मिनट बाकी है तो और एक सुंदर उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण सुनिए। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम, निनदम मतलब आवाज, श्रुत्वा पर्जन्य बारिश का आवाज सुन के या बादलों का गड़गड़ाहट सुन के, मंडुका ससृजर गिरह। अभी गर्मी के दिनों में आप कभी सुन रहे थे मेंढक का टर 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 टर, कल रात से नींद नहीं मेरे को। ऑफकोर्स नींद अच्छा आता है बाद में, थोड़ा समय के लिए नींद नहीं आता है पर बाद में टर 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 आराम सोला देता है क्योंकि एक ही चीज होते रहता है ना, एडजस्ट हो जाता है आदमी। एकाएक कल रात को इतने सारे मेंढक टर 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 टर, पूरा गर्मी के दिन 4 महीना सोए थे कुछ नहीं, आवाज ही नहीं उनका, सब सोए हुए थे। बारिश आ गया तो सब उठ गए, टर्राना शुरू हो गया उनका। तूष्णीम शयाना प्राग यद्वद ब्राह्मणा नियमाते, वे मेंढक जो अभी तक मौन पड़े हुए वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक टर्राने लगे, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे। सब सोते रहते, घंटी बजाया, टांग मंगल आरती के लिए उठो रे, ओम अज्ञान अधिमेरांधस्य ज्ञानांजन, नहीं तो सोते रहेंगे वो लोग। कोई घंटी बजाने वाला होना चाहिए, कोई ए चलो उठो। गुरुकुल में 2-3 लड़के थे, उनका उठाने का तरीका अच्छा नहीं था बेचारा, चद्दर पकड़ के खींच लेते थे वो लोग, ऐसे सोते थे बच्चे। फिर मैंने बोला ऐसे मत करो बेचारा, प्रेम से उठाओ, सुबह सुबह उठते वक्त अच्छा भावना से उठना चाहिए। तो मैंने क्या किया, गीता का श्लोक लगा देता था और प्रेम से बोलता, अरे बोल 5 मिनट पहले से उठाना शुरू करो। बच्चों का साइकोलॉजी ऐसा है ना, जो भी आप करना चाहते हो ना बच्चों को 5 मिनट पहले से बोलना शुरू, चलो उठो उठो पानी से उठो स्विमिंग पूल से उठो, आधा घंटा चलने वाला है तो पहले से ही शुरू करो ये काम, लास्ट मोमेंट में करके आप भी गुस्से हो जाते हो वो भी गुस्से होता है बाद में, कुछ नहीं 10 मिनट पहले ही शुरू करो। उनका 10 मिनट लगता है, वार्म अप टाइम है उनका। अरे बोल उठो। तो हमारे एक महाराज थे जो इंचार्ज थे उनके बच्चों के, तो बोलते थे देखो 3 बोलने तक उठना चाहिए, 1, 2, 2.5, 2.5, 3, 3.25। पौने तीन एक, पौने तीन दो, अंत में धीरे धीरे करके उठ जाता था बच्चा, पौने तीन 99 करेंगे तब तक, धीरे धीरे उठाएंगे उसको, बट प्रेम से वो भी उठता है, हाँ समझता है बच्चों में ठीक है उठ रहा हूँ। और रजोगुण तमोगुण से फिर सत्वगुण में एकाएक आना चाहिए, इतना आसान नहीं है ना, तीन गुणों से ऊपर जाना पूरा जीवन भर का प्रयास है, तो 2 मिनट में कैसा होगा, होता है थोड़ा समय। तो श्रील प्रभुपाद के टीका बहुत सुंदर है, सुनिए। वर्षा ऋतु में अनेक पोखर सरोवर और छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती है। अरे सॉरी सॉरी, नो नो नो, श्रील प्रभुपाद की टीका इस पर ही सर। प्रथम वर्षा के बाद जब बादलों में गर्जना होती है तो सारे मेंढक टर्राने लगती है लगते हैं, मानो एकाएक विद्यार्थी गण अपना पाठ पढ़ने लगे हो। विद्यार्थी सामान्यतः प्रातःकाल जल्दी जग जाते हैं, किंतु वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या सांस्कृतिक संस्थान में घंटी बजती है तब उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और प्रातःकालीन नित्य कर्म करने के बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह अब सुनिए कितना सुंदर से प्रभुपाद ने एक छोटे से घटना को लेकर छलांग मारकर हमको दिव्य स्तर पर ला देते हैं। इसी तरह कलयुग में, कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है। जीव जागो गौरचंद्र बोले, कोता निद्रा जायो माया पिशाची रखो। श्रील प्रभुपाद भी, हम लोग सब सबसे खतरनाक कब है मालूम, जब आदमी सोया हुआ तो उसको जगा सकते हैं, पर जब सोने का वो नाटक कर रहा है, प्रिटेंडिंग ढोंग कर रहा है, उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। हम भारतवासी ऐसे थे, पर प्रभुपाद गेव द क्लैरियन कॉल, घंटी बजा, ए उठो मूर्खों, अध्ययन करो, समय हो गया, ये समय चला जाएगा, फिर से नहीं आएगा, बहुत करोड़ों साल से मिला हुआ है, दुर्लभ मानव तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो उठाना पड़ता है क्योंकि हम बच्चे हैं, कितना भी सुनो समझते नहीं, क्योंकि साक्षात्कार नहीं हुआ है। एक व्यक्ति से पूछा गया, प्रभु जी हाउ डू वी नो हु इज अ सीरियस डिवोटी, हु इज अ सीरियस डिवोटी। तो उन्होंने 7वें अध्याय का 14वां श्लोक बोला, बोले सीरियस डिवोटी मतलब दो चीज को सीरियसली लो, बस दो चीज को सीरियसली लो, एक दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया को सीरियसली लो। गंभीर भक्त या प्रामाणिक भक्त वो है जो माया को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि माया किसी तरह से आ सकती है। अभी मैं भक्त हूं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सोए रहता है, फिर भी लगता है मैं जागा हुआ हूं। कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा सपने में आता है, सो जाता हूं ना, मैं उठा, अलार्म दबाया, स्नान किया, मंगल आरती कर, सोया हुआ मैं, कटर आवाज आया, दबा के सो गया ना, 5 मिनट के बाद वो स्नूज अलार्म होता है, उसके अंदर ऐसा लगता है सोया उठा सब किया, एक्चुअली सोया हुआ हूं मैं। वो सबसे खतरनाक है। तो मम माया दुरत्यया, दुरत्यया एक्चुअली पार कर पाना बहुत मुश्किल है, तो माया को गंभीरता से लो। और दूसरा सीरियस डिवोटी कौन, माम एव ये प्रपद्यन्ते, टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। अगर केवल माया को सीरियसली लोगे ना, तो आप निरुत्साह हो जाओगे, हताश हो जाओगे। ओनली इफ यू डिस्कस अबाउट हाउ डिफिकल्ट इज माया, हाउ डिफिकल्ट इज माया, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी लूज एंथुजियाज्म, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड एंड अल्टीमेटली कमिट सुइसाइड। दूर तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होना वाला, ये सही बात है, आपसे नहीं होने वाला। माम एव ये प्रपद्यन्ते, देयरफॉर टेक कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि एक ही तरीका, दूसरा तरीका है ही नहीं, हम क्या करें। नहीं, कोई और सिंपल बताइए ना प्रभु जी, और सिंपल। इससे सिंपल क्या हो सकता है, इतनी बड़ी चीज को एक समय में एक देने के लिए दे रहे, पर इसको हम गंभीरता से नहीं ले रहे। तो एक आचार्य आके हमको उठाते, बच्चे जैसे हम लोग भी, फिर हम लोग मेंढक जैसे टर्राते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे रामा हरे रामा, फिर से उठाना पड़ता, बार बार टीचर को देखना पड़ता, एक मॉनिटर रखना पड़ता है, ठीक से किया कि नहीं होमवर्क, किया कि नहीं, उठो 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 बोलते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी तक साक्षात्कार नहीं है। क्या साक्षात्कार हो गया तो कैसा सो सकता है आदमी, नींद नहीं आएगा आपको अगर समझ गए तो। संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी कालावसानी कृतो निद्रा आहार विहार कादि विजितो। कैसा होगा ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये शारीरिक स्तर पर है और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी, एक नियम बनाना पड़ेगा, बिना नियम बनाए कुछ नहीं होगा, संख्या पूर्वक, और वो संख्या को धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा, पूरे दिन भर फैलना पड़ेगा, ताकि वो माया को धीरे धीरे धक्का मार के, है ना, वो अरब के तंबू में एक बार ऊंट आ गया, वो अरब सोया हुआ था, ऊंट बोला है थोड़ा जगा दो ना, बहुत गर्मी है, तू इतना बड़ा, मैं कैसे, थोड़ा ठीक है, सर घुसा ले, बस सर घुसाया, गला जल रहा है, गला घुसाया, फिर बोला ये जो पैर 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 घुसा, सामने का पैर, फिर पीछे का पैर, फिर पूंछ, फिर बोला ये जो क्या वो पीछे का ऐसा हम्प, वो बोला वो बाहर है, तो बोला ठीक है ले ले अंदर, तो ऊंट अंदर अरब बाहर। तो माया ऐसी बोलती है, माया एक साथ नहीं आती, आ गई आ जा तू मेरे चंगुल में, नहीं, तू करना तू भक्ति, कौन तेरे को मना किया है, कल कर ले, आज 15:30 कर ले, कल 16:30 माला कर ले, हो जाएगा। गिरा क्या तू, अभी तक तिलक है ना, कंठी माला है कि नहीं, देख ले आईने में देख, है ना, क्या तकलीफ है, आज खा ले इधर उधर थोड़ा, चलता है, धीरे धीरे करके आती हो, और बाद में माया अंदर हमारा कृष्ण भक्ति बाहर। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, भुरीजन प्रभु बोले दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, प्रभु जी दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, इन दिस वे नथिंग मेटीरियल सीम्स प्रैक्टिकल, नथिंग स्पिरिचुअल सीम्स प्रैक्टिकल, एंड देयर फॉर वी आर प्रैक्टिकली आउट ऑफ भक्ति, इट इज अ फैक्ट, नथिंग स्पिरिचुअल सीम्स प्रैक्टिकल टू ए मेटीरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। कृष्ण भावना या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत, पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, सुबह सोने को बोलते हैं हम लोग, सुबह उठने बोल रहे, पूरा उल्टा, जिस चीज के लिए पूरी दुनिया पागल है हम बोलते हैं वो पागलपन है छोड़ दो। इसीलिए जेटलैंड ने बोला प्रभुपाद के गुरु भाई को, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, नो मीटिटी, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट से, नो गैम्बलिंग, नो कृष्ण, तुम्हारा कृष्ण बहुत यार घुसता यार, धीरे धीरे हमारे जीवन में आके हमारा प्राइवेसी को ले लिया, पूरा कृष्णमय बना दिया। हाँ यही तो है कृष्ण का चाल, सुपर सेल्समैन, कुछ मत करो, चैंट एंड बी हैप्पी। अच्छा फिर चैंटिंग करना शुरू किया, 10 नियमों का पालन करना पड़ता है, अपराधहीन, क्या करना है, बोले भक्तों की, अरे भक्तों के संग में रहना पड़ेगा ना, निंदा नहीं करने के लिए, भक्तों की निंदा मत करो, ये करो ये करो, देखते 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 अंदर कृष्ण अंदर माया बाहर। हरिदास ठाकुर ने ऐसे ही किया, माया देवी आई हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए, हरिदास तू कितना सुंदर है, थोड़ा बोला हाँ, कल सुबह कल सकाली आता ना, को मेरा जपा है ना, ये हो जाने दो, उसके बाद कल से हम दोनों मौज करेंगे, ठीक है। बैठी रही बैठी रही बैठी रही, जपा खत्म नहीं हो रहा इनका, दूसरे दिन तीसरे दिन बाद में बोले हरिदास तेरा जपा लगता है खत्म ही नहीं होता है, बोले क्या करूं कृष्ण भावना ऐसा ही है खत्म ही नहीं होता है, अंत में वो शरण गई। सो दोनों का प्रपोजल ही है, माया बोलता है ये इतना दे दे मेरे को, उंगली दे दे बस, पूरा शरीर तू रख, उंगली दे दे, 2 साल के बाद तू भक्ति करना, अभी थोड़ा सेटल हो जाने दे सब कुछ। अरे दुनिया में क्या चीज सेटल है, तो माया ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेती है वो, एक एक क्षण करके। और अगर आप एक क्षण दोगे तो आपकी दृढ़ता उस हद तक कम हो जाएगी। एक क्षण आपने माया को दिया, एक क्षण लेना तकलीफ बात नहीं है, पर एक क्षण दिया हमने तो अगले क्षण ना बोलने की शक्ति चली जाती है। समस्या यही है माया को, एक बार आपने उसको हां बोला ना, फिर ना बोलने की शक्ति में वो दृढ़ता नहीं आता। और एक बार आपने कृष्ण को हां बोला ना, तो दूसरे क्षण फिर से हां बोलने की शक्ति देते हैं भगवान। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। आप एक बार कृष्ण को हां बोलो और माया को ना बोलो, फिर दूसरे घंटे की शक्ति देंगे। उस घंटे भी आप बोलो, तीसरे घंटे की शक्ति देंगे, तीसरे दिन की शक्ति देंगे, तीसरे साल की शक्ति देंगे, जन्म जन्म की शक्ति देंगे। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेयर डू वी बिगिन, हुम डू वी से यस टू एंड हुम डू वी से नो टू। और ये आचार्यों का काम है उठाना हमको, कि स्वाभाविक है फिर से सो जाना, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। जिस प्रकार बारिश आता है तो मेंढक उठ जाते, अभी देखिए सुबह भी आवाज आ रहा है, तो इस तरह से, क्योंकि बादल हैं, बारिश है। इसी तरह से आचार्य जो है कृपा की वृष्टि करते हैं। अयोग्य हैं हम, पर एक अनुकूल वातावरण बना के दिए, अनुकूल चीज बना के दिए। हाँ, ये संस्था उनकी कृपा है, भक्तों का संग उनकी कृपा है, भागवतम उनकी कृपा है। ये कृपा की बारिश आएगी तो ये जो जैसा मेंढक क्यों आते हैं, क्योंकि वहां ये होता है, क्या बोलते हैं, तालाब होता है ना, छोटे 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 भी तालाब रहे तो वहां मेंढक आ जाते हैं, उनको तो उसमें से नरिशमेंट मिलता है। तो ये उनकी कृपा है, तो उसका हम लाभ लेंगे तो फिर कृष्ण भावना। तो इस तरह से हम देखेंगे बारिश के ऋतु को देखकर ऐसे शक्तिशाली एकदम पावरफुल रियलाइजेशन साक्षात्कार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। शाम को भी देखेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर एक एक श्लोक भी एक एक तत्व को, और उसमें अगर थोड़ा गहराई में आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक श्लोक जो है ये भागवत बन जाएगा पूरा। एक पासवर्ड खोलो तो पूरा फाइल खोलता है, वो पूरा यही खुल जाता है फिर बाद में। बाइट पावर, मेगा बाइट, एक एक श्लोक में भी मेगाबाइट इंफॉर्मेशन है, गीगाबाइट है, कौन सा ज्यादा है, मेगा की गीगा, हाँ गीगा ज्यादा है, उससे भी सुपर गीगा, टेरा, हाँ टेराबाइट। श्रील प्रभुपाद की जाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय, निताय गौर प्रेमानंदी।